तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर से हम लोग एक ऐसी हकीकत की तरफ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी तो गुजर गई, मौत कैसी आएगी। आज का हमारा लेक्चर जो है ये एक थॉट प्रवोकिंग सेशन, और किसी और को नहीं सोचना, अपने आप को। दुनिया में हर मौजू पे इख्तलाफ है, मज़हब के नाम पे छोड़ दीजिए, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, अल्लाह है भी कि नहीं, इस पे भी इख्तलाफ है। यानी लोग ये नहीं कह सकते कि माँ है कि नहीं, बस इसलिए माँ के होने ना होने पे इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हर रोज़ लाखों लोग दुनिया में आते भी हैं और दूसरों को आता हुआ देखते भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला की हस्ती पे भी इख्तलाफ है कि गॉड है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पे कोई इख्तलाफ नहीं, मुसलमान गैर मुस्लिम, अपने आप को कुछ भी ना कहने वाला भी मौत का इनकार नहीं करता। सच है कि नहीं? मरने के बाद क्या होना है, डज हेल एग्जिस्ट, जन्नत है कि नहीं, इस पे होगा, लेकिन लफ्ज़ मौत पे इख्तलाफ नहीं है। और वजह यह है कि इसकी हर रोज़ इतनी रिवायतें मिल जाती हैं इंसानों को अपने ही इर्द गिर्द फैली हुई दुनिया में, कि वो इनकार कर नहीं सकता, जो करेगा वो झूठ बोलेगा। तो आज इंशाल्लाह हम अपने इस सेशन में देखेंगे कि मौत जैसी चीज़, अगर वो इंसान की बुरी हुई तो क्या बनेगा। यानी हमारा आज का मौजू क्या है, बुरी मौत और इससे बचने के असबाब। और जो सिस्टर्स माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं उनको बता दूं, और जो बाहर से सुनेंगे बाद में भी सुन रहे होते हैं उनके लिए भी, कि आज का लेक्चर 4 लेक्चर में से एक है, 1 out of 4, जो हम अल ईमान बिल आखिरा सीरीज़ में करते हैं। कल एक लेक्चर आपके पास इधर करीब ही गराज सेंटर है उसमें हुआ, ये सेकंड लेक्चर है। इसी का थर्ड लेक्चर आज शाम को फिर होगा। अगर सुनने के बाद दिल चाहेगा तो आप लोग हमारे साथ चलिएगा या खुद आ जाइएगा, और इंशाल्लाह कल 4th लेक्चर है। यानी 4 लेक्चर्स में हमने मौत से मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें देखनी है। आइए देखते हैं कि आज हमारे नसीब में क्या है। कोई ये ना सोचे कि पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो आज के लेक्चर से मुझे फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर लेक्चर अपनी जगह पे एक मुकम्मल मौजू होता है, एक पूरी चीज़ है, और अल्लाह करे कि हम उसको ले सके। आइए शुरू करते हैं। कोई सवाल आपके जहनों में आए सुनते हुए तो उसको अपने पास नोट कर लें, इंशाल्लाह बाद में आपको मौका भी दूंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ईमान बिल आखिरा, आज हम इसमें से बात करेंगे बुरी मौत के असबाब और बचाव की तदाबीर। इसके लिए जो आज आयात है हमारे सामने वो सूरत अल कहफ की आखिरी आयात, जो आप में से बहुत सारे साथी माशाल्लाह हर जुमे को पढ़ते होंगे। आइए देखते हैं कि इन आयात में अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फहबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम जहन्नमु बिमा कफरू। एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए, कफरू वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया और इसके हजूर पेशी का यकीन ना किया, इसलिए इनके सारे आमाल जाया हो गए। क़यामत के रोज़ हम इन्हें कोई वज़न ना देंगे। इनकी जज़ा जहन्नुम है। क्यों, अल्लाह ने जुल्म किया? नहीं, अल्लाह तो किसी पे जुल्म नहीं करता, बल्कि इस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और इस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे, लमला तजल्ला मिनहुम। इसके बरक्स दूसरा किरदार, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला, और कभी उस जगह से निकल कर कहीं जाने को इनका जी न चाहेगा। ये हैं वो दो तीन आयात जिस पे आज हम गौर व फिक्र करेंगे, और फिर इसकी रोशनी में हम देखेंगे कि अल्लाह सुबहाना ताला ने दुनिया में ही सब कुछ बताकर हमारे ऊपर कितना रहम फरमाया। कभी ऐसा होता कि मरने के बाद अचानक ये पता चलता कि जन्नत भी है या जहन्नम भी है, और वहाँ जाकर हम उस तालिब इल्म की तरह हाथ मलते कि जिसको नहीं पता था कि आज के पेपर में क्या आने वाला है, या वो तैयारी मैथ की करके गया और वहाँ पता चला कि आज तो केमिस्ट्री का पेपर है, तो वो तो जाहिर है कि उसके लिए बहुत ही एक अचंभे की बात थी। मैं ऐसी आयात को जब भी पढ़ती और सुनती हूँ तो कुरान पाक को चूमने को दिल करता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वजूद के साथ आज तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उन पर इतनी मोहब्बत आती है। और मैं ये सोचती हूँ कि वो लोग जो कुरान को नहीं मानते या कुरान को मानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, क़यामत का दिन उनके लिए कितना अचानक मामला होगा। ये ऐसी है जैसे मिसाल दे रही हूँ, किसी का ऑपरेशन होना है, पहले टेस्ट होते हैं, दवाइयाँ आती हैं, डायग्नोज होता है, फिर उसको कहा जाता है कि अब तुम्हारा फलां दिन ऑपरेशन है, और बाहर की दुनिया में तो मरीज़ को सब कुछ बता देते हैं कि भाई आपके साथ ये कुछ होना है, आप तैयार रहिए। होता क्या है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद, कोशिश के बाद जब वो इलाज करते हैं या मरीज़ की थेरेपी होती है, तो थोड़ा सा वो जहनी तौर पे तैयार होता है। अचानक तो वो किसी को इंजेक्शन भी नहीं लगाते, क्यों भला? वो कहते हैं मरीज़ का हक है। तब देखिए कि मरीज़ को बहुत कुछ पहले बताते हैं। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन और बंगाली देसी कल्चर में क्या होता है, मरीज़ को ना बताओ कि उसको क्या है, और वहाँ आपको पता है इसे उलट है। मरीज़ के अलावा किसी और को अगर बताना है तो पहले रिटर्न इजाज़त लेते हैं, चाहे शौहर है, मरीज़ को सबसे पहले बताते हैं। क्यों? ताकि वो जहनी तौर पे तैयार हो जाए। फिर उसको काउंसलिंग करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, इट्स ओके, दिस दिस, और फिर वो ऑपरेट करते हैं। अल्लाह सुबहान ताला ने कुरान पाक में, मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ पहले से बताकर मेंटली प्रिपेयर किया कि हर दिन इस शऊर के साथ गुजारना कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला ने पहली बात जो इस आयत में की, इन अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, किसका कुफर किया? बे आयाती रब्बिहिम, अपने रब की आयतों का कुफर किया। थोड़ा सा समझिए, अगर आप कर्सर रख कर दिखा सकें तो दिखाइए। दो बातें, ओलाई का ये लोग, ये सब इशारा है, मैं कोई तफसीर नहीं कर रही, सिर्फ मेरा दिल कह रहा है कि आप कुरान की आयत को एंजॉय करें। ओलाई का ये लोग कौन लोग? जैसे हम कहते हैं वो, ये, दिस दिस एंड दैट। अल्लज़ीना इसम मौसूल कौन? कफरू, जिन्होंने कुफर किया। कुफर का लफ्ज़ क्या है? इनकार। अब आप किसको काफिर कहेंगे? हर बंदा काफिर है? काफिर कौन है कि जिसके सामने हक पेश हुआ और उसने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया? आपने किसी को चाय पूछी नहीं तो उसके इनकार करने का, ना करने का क्या जवाब है? आप दूसरा एक उसको चाय पेश करते हैं, वो कहता है नो थैंक्स, आई डोंट ड्रिंक टी। ये है काफिर। किसका काफिर? चाय का। बस ये फर्क है। अल्लाह सुबहाना ताला ने हर इंसान को अपनी मार्फत दी। इस दुनिया में भेजने से पहले हमारी रूहों से वादा अलस्त लिया। आप में से कितने लोग, बाय द वे, मेरी इंफॉर्मेशन के लिए कुरान के ताले बिल में वो हैंड रेस करें, कोई कोर्स करते हैं, तफसीर कर चुके हैं, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जानते हैं? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं भी और काफ़ी नहीं भी हैं। तो बात समझिएगा, सूरत अल अराफ में अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया गया तो उनकी पुश्त पे हाथ फेरा, और क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों की रूहें रेत के ज़र्रों की तरह फैल गईं। पूरी हदीस में ये वाक़या मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने हर इंसान से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? एम आई नॉट योर गॉड? सब ने कहा भला क्यों नहीं, वाई नॉट, आप हमारे रब हैं, हम दुनिया में जाएंगे जब आपको रब मानेंगे, आपकी बात मानेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन अल्लाह ने, ये आज की जुबान में बोल दूं कि इंसान के ह्यूमन डाटा में डाल दी। ये कंप्यूटर है ना, जैसे ये नया आया, कुछ सिस्टम इसमें पहले से एम्बेडेड थे, फिर वर्ड डाला किसी ने तो वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट के सब खुल गए, पावर पॉइंट, पीडीएफ, सब चीज़ें तैयार कर दी। अब मैं चाहूँ तो पावर पॉइंट खोल लूँ, मैं पीडीएफ खोल लूँ, लेकिन अगर इसमें वो सिस्टम ही नहीं डला हुआ तो मैं खोल ही नहीं सकती। ये जो फॉन्ट आप देख रहे हैं ना, ये एक एक फॉन्ट को पहले डाला जाता है, फिर ये खुलता है। कोई और कंप्यूटर लाइए जिसमें नहीं होंगे, नहीं चलेगा, डिस्टॉर्टेड होगा। बस इसको डाटा कहते हैं फीड इन। आज की दौर में आप कह दें अपलोड, इसमें अपलोड कर दिया। इन बैक ऑफ द माइंड हर इंसान, चाहे आज उसको आप मुसलमान कहते हैं या आप उसको एथियस कहते हैं, इन बिटवीन सारे ग्रे के शेड्स मौजूद हैं, सबको ये बता दिया था कि अल्लाह रब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी का इकरार कोई भी शख्स करता है जो कलमा पढ़ता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि वो एक है और उसके सिवा कोई और माबूद नहीं। और उसके बाद हर नबी ने आकर इसी अहद को याद दिलाया। माशाल्लाह आप स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जितने डिसिप्लिन से आप सुन रहे हैं ये दिखा रहा है कि आप में इल्म की तलब या तो है या आप वाकई तालिब इल्म हैं। हर पैगंबर को अल्लाह ने एक काम दिया था, और वो क्या था? रिमाइंडर दो। तीन जगह तो सूरत बकरा में था, या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती, ए बनी इसराइल याद करो मेरी वो नेमत। तो याद कौन सी चीज़ कराई जाती है? जो पहले बताई हो और जिसके भूलने का डर हो। वादा अलस का रिमाइंडर दिया था हर नबी ने अपनी कौम को, हर नबी ने अपनी कौम को ये वादा याद दिलाया। आज के दौर में कुछ बच्चे हैं सवाल करते हैं, अब आप तो माशाल्लाह एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, लेकिन मैं वेस्ट में, मैंने जितना भी अल्लाह ने जगह दिलवा दी, एक बहुत कॉमन सवाल किया जाता है कि हमारे बच्चे ये कहते हैं कि हम तो एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, तो मुसलमान है तो हमारा वो दोस्त जो इस मुस्लिम घर में पैदा नहीं हुआ वो क्या करे, वो क्यों इस्लाम सीखे या वो इस्लाम की तरफ क्यों आए? तो ये एक डिबेट है बाहर की दुनिया में, आपसे इसका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये छोटी सी बात सिर्फ इस आयत के इस टुकड़े के नाते से दे दूं, और वो क्या है? वो ये है कि वादे अलस ने ये साबित कर दिया कि हर इंसान के बैक ऑफ माइंड में अल्लाह ताला की मार्फत है। पैदा होते बच्चे को कोई नहीं कहता ये औरत तुम्हारी माँ है, लेकिन वो बच्चा माँ के हाथ में आते ही चुप क्यों कर जाता है? मैंने एक पिछले दिनों अपनी एक क्लास में शेयर की थी चीज़, कि एक बच्चा अपनी माँ को चार मुख्तलिफ तरीकों से पहचानता है, और उसमें एक माँ का लम्स है, टच, मदर टच, और एक मदर स्मेल है। बच्चा अपनी माँ को स्मेल कर लेता है, किसने सिखाया? रोता बच्चा माँ के हाथ में आके चुप हो जाता है ना। इसी तरह हमारी रूहें अल्लाह ताला की मार्फत चाहती हैं। ये जो इन्नल्लज़ीना कफर हुए ना, ये डिनायल फेज क्या है कि इंसान अपने नफ्स के हाथों या माशरे में जो हो रहा है उसके हाथों अल्लाह ताला की इन बातों का इनकार कर दे। और यहाँ कुफर देखिए अल्लाह का नहीं है, भी आयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयतों का कुफर। नंबर एक, तो पहली बात, ये कुफर एक मुसलमान भी कर सकता है और एक गैर मुस्लिम भी कर सकता है, क्योंकि कुफर का मानी क्या होता है? छुपाना। अभी मैंने आपको बताया किसी ने चाय का कुफर कर दिया, आपने आज के प्रोग्राम की दावत दी होगी बहुत सारों को, और माशाल्लाह बहुत सारे आ भी गए। हो सकता है कोई एक ऐसा है जो आ भी सकता था, वो कहता मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, मुझे नहीं दर्स वर्स सुनने, तो उसने आज के दर्स का कुफर किया, समझ गए ना, इनकार। यहाँ किसका है? बी आयाति रब्बिहिम। सेकेंड वर्ड पे अपना कर्सर रख कर दिखाइए, आपने रब की आयतों का इनकार। अब रब की आयतें कौन सी हैं भाई? आप फौरन कहेंगे कुरान की आयतें, ऐसे ही है ना, 6,000+ आयतें। लेकिन सिर्फ ये आयतें ही कुरान की आयतें नहीं हैं, चार किस्म की आयतें अल्लाह ने इस कायनात में फैलाई हुई हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने रब की मार्फत ले सकते हैं और अपने रब का कुर्ब पा सकते हैं। नंबर एक, कुरान की आयतें। हर दौर के नबी के ऊपर जो भी इल्हामी किताब नाजिल की गई उसकी आयतें, जब तौरात उतरी थी तौरात की आयतें, इंजील की जो बात थी उस वक़्त की वो, और आज कुरान की आयतें। ठीक है, दूसरी चीज़ आयात में कायनात है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायात लिउलुल अल्बाब। आपको मुझे आसमान दिखता है, सूरज चांद दिखता है, सितारे दिखते हैं, ये सब अल्लाह की आयतें हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने कुफर के माहौल में आँख खोली थी, वो इन्हीं चीज़ों को देखकर पहचान गए थे कि इन्नी वज्जहत वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरनी या फ़तर समावाती वल अर्द। तो क्या पता चला कि कायनात बोल बोल के अपने रब का तारुफ दे रही है। अल्लाह ताला खुद तो छुपा हुआ है लेकिन उसकी निशानियां जाहिर है। तो कुफर से निकलने का पहला रास्ता कुरान, वही रेवलेशन। दूसरा रास्ता कायनात, इसमें गौर करिए। तीसरा भी एक है, वो आप और मैं खुद हैं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे तो अपने वजूद के अंदर अल्लाह ताला की इतनी निशानियां हैं, क्या तुम गौर नहीं करते? हमने अपनी मंडे की क्लास में एक पावर पॉइंट दिखाया था, वीडियो थी, कि एक बच्चा अपनी माँ के पेट में हर वीक, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक से होता हुआ क्या उसका वेट हो जाता है। 1 वीक का बच्चा माँ के पेट में जब फीटस की सूरत में होता है ना, तिल के बराबर होता है, सेसमी सीड जी। 2 वीक का बच्चा लेंटल, मसूर के दाने जितना हो जाता है। 3 वीक का बच्चा, इसी से बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे तो एंड पे आपको भी दिखा देंगे इधर पावर पॉइंट, इंजॉय करेंगे आप। तीसरा वीक जो, और उसके बाद होते हुए जो बच्चा 16 वीक का हो जाता है ना, वो एक लेमन के साइज का होता है माँ के पेट में। क्या ये सब नहीं बता रहा कि अल्लाह ने बनाया इंसान को? हमारे जिस्म में कितनी मशीनें काम कर रही हैं, कुछ और आ रहा? इतने अच्छे माहौल में भी आप देखिए कि माइक की वजह से हमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है ना, आपके मेरे अपने में तो कोई नहीं होती। अंदर इतनी मशीनें चल रही हैं हमारे, लेकिन आप देखिए कि कोई शोर नहीं। आज साइंसदानों ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि इंसान के जिस्म में एक ही वक्त में जितने सिस्टम चल रहे हैं, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो भी आप सबको भी पता है, अगर इसको आउटसाइड द बॉडी फैलाया जाए तो कितने मील जगह चाहिए होगी इतनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। इसी तरह एक चौथी किस्म की निशानियां होती हैं, और वो क्या होती हैं जो आपकी मेरी जिंदगी में होती हैं? यहाँ बैठे बैठे अपने बारे में सोचिए, जिंदगी में कभी कोई ऐसा मामला हुआ आपके साथ? मौत के मुंह से बचे, बीमारी आई, जानलेवा थी, अल्लाह ने बचा दिया, टूटता हुआ घर बच गया। हमारी अपनी फैमिली में ऐसी कहानी है कि जब एक घर था, ऐसा था कि लड़की का सामान तक वापस जा चुका था, लेकिन आज माशाल्लाह वो मियाँ बीवी अपने जवान बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अलजब्बार टूटे घरों को भी जोड़ देता है, टूटे दिलों को भी जोड़ देता है। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला दिन रात हमारे साथ ऐसे ऐसे मामलात करता है जिसको देखकर इंसान यकीन कर लेता है कि अल्लाह की हस्ती है। तो अब जरा आयत पे नजर डालते हैं। वलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिनकी आंखें खुली ही नहीं। कुरान खुल गया, कायनात खुल गई इनके सामने, अपनी जाती जिंदगी की इतनी मिसालें खुल गईं, मर्दों को देखा, जीतों को देखा, लेकिन इन्होंने रब के वजूद को नहीं माना। और दूसरी चीज जिसका इनकार किया, वलिकाई, और उसकी मुलाकात का इनकार, ये जुर्म है। क्योंकि जब बात होनी है ना बुरी मौत की और जहन्नुम की बात होती है, तो आज के दौर में बहुत सारे लोग अपसेट होने लगते हैं, क्यों आग में डालना है? जन्नत को मानता है आज एक गिरोह, जहन्नुम को नहीं मानता। क्यों? कहते हैं ये जुल्म है, गॉड लव्स अस. एक बहुत ही मशहूर फिरका है क्रिश्चियंस का, जोहा विटनेस कहते हैं उनको, शायद आपको इधर ना उनसे वास्ता हो. मिशनरीज हैं वो, सड़कों पे रोड्स पे खड़े वो दावत दे रहे होते हैं लोगों को. क्यों? वो कहते हैं जीजस का पैगाम. खैर वो तो एक अलग मौजू है. उनका अकीदा क्या है कि जन्नत है. दे बिलीव इन पैराडाइज बट दे डोंट बिलीव इन हेल. पूछे क्यों? कहते बिकॉज गॉड इज सो मर्सीफुल, सो हाउ कैन ही थ्रो द पीपल इन द हेल फायर. अल्लाह उसका जवाब दे रहे हैं, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को आग में डालने का. कफर हूँ. और किसका कुफर? आयतों का और उसकी मुलाकात का कुफर. अब ये तो वो कुफर के शेर्स हैं जिस पे घंटों बात होगी, लेकिन आगे ज़रा अंजाम देखिए. फहबितत आमालुहुम, फिर ज़ाया हो जाएंगे उनके अमल, हबते अमल, अमल ज़ाया हो जाएंगे. अरबी ज़ुबान में दो लफ्ज़ आते हैं मुतरादिफ में बताऊँ अगर. एक होता है बातिल, लातुब तिलु सदक़ातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, और एक लफ्ज़ है हब्त. फ़र्क क्या है? हबता कहते हैं जानवर इतना चारा खा ले उसको पता ही नहीं चल रहा, जिसका पेट फूल के फट जाए, जैसे वो जुए बकर होती है ना, गाय जितनी भूख. इतने बड़े बड़े इनके अमाल होंगे ढेर चैरिटी के और अदल के, लेकिन सब जाया हो जाएंगे. फला नुकीम लहुम यौमल कियामति वजना, और हम उनके लिए क़यामत के दिन तराजू भी नहीं रखेंगे. ये नहीं कि वज़न नहीं करेंगे, तराजू ही नहीं रखेंगे, यानी जिसको हमारे यहाँ कहते हैं बिला मुकाबला फेल. ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, ये जज़ा है उनकी जहन्नम. बीमा कफ़रू, दोबारा आ गया कुफर की वजह से. तीसरा जुर्म इनका देखिए, वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा. पहला जुर्म क्या था आयत के शुरू में? कफ़रू भी आयाती रब्बीम. दूसरा जुर्म क्या था? लिखाई ही, अल्लाह की मुलाकात का इनकार. तीसरा जुर्म आ गया, रसूलों का और आयतों का मजाक उड़ाते थे. दे मेक फन, मौकरी करते थे, कुरान को जलाते थे, रसूल का मजाक करते थे, मुसलमानों पे बुली करते थे. अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को यहाँ बुरे अंजाम से डराया. इस आयत की रोशनी में आज हम देखेंगे बुरी मौत के असबाब और बचाव की तदाबीर, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा मामला हो. तो मौत हकीकत है, मौत का एक टेस्ट है. खाने की तरह कुछ लोगों का खाना बहुत मज़े का होता है, और हो सकता है कुछ का मज़े का ना हो. तो मौत आनी है. जिस तरह बाज़ लोगों की मौत अच्छी और मिसाली होती है, आज शाम का हमारा टॉपिक यही है, हुस्ने खात्मा. जो बातें आज ज़रा सी बोझल पड़ेंगी ना तबीयत में, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आप रिलैक्स फील करेंगे. तो अच्छी मौत की तरह कुछ लोगों की मौत बुरी भी होती है और दूसरों के लिए इबरत का जरिया बन जाती है. तो आइए हम चंद असबाब को देखेंगे कि बुरी मौत किसको आती है, ये किसकी मौत का जायका सबसे बुरा है. नंबर एक, ईमान से महरूमी. जी, तीन किस्म के लोग हैं जिनकी मौत हमेशा बुरी होती है, यानी देर इज नो चांस कि उनका बड़ा अच्छा अंजाम हो जाए. नंबर एक, ईमान की दौलत से महरूम शख्स. नंबर दो, काफिर या मुनाफिक. और नंबर तीन, ईमान लाने के बाद मुर्तद होने वाला, रिजेक्ट कर दिया इस्लाम को. ये तीन लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में कुरान और सुन्नत हमें बताता है कि इनकी मौत बुरी है. मिसालें दे दूं. नंबर एक, फिरौन बहरे कुलजम में अपने लश्करों समेत गर्क कर दिया गया. दूसरी मिसाल, कारून की. इसको खजानों के समेत जमीन में धंसा दिया गया. आज के दौर में ये बिलियनेरियन था. तीसरी मिसाल, हामान, नमरूद और अबू जहल जैसे सरकशों का अंजाम बुरा हुआ. अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों की मौत बुरी आती है, क्यों आती है? क्योंकि इनके ईमान में खोट होता है. देखिए, छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ. सोना 24 कैरेट प्योर गोल्ड, जो उसका रेट है उतना ही मिलेगा ना कीमत, कोई काट नहीं सकता क्योंकि 100% प्योर है. फिर 22 कैरेट, जितना उसमें खोट मिलता जाएगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप लोहे के ऊपर गोल्डन पॉलिश करवाएं और ज्वेलर के पास ले जाएं, ज्वेलर उसकी क्या कीमत देगा? जीरो। ऐसे ही है ना, कोई आपकी दोस्त आपके फेक सेट को गोल्ड पॉलिश में देकर गलती खा सकती है, और ख्वातीन काफी कोशिश भी करती हैं कि लुक्स लाइक रियल, लेकिन रियल ना ही हो तो अच्छा है ना। क्यामत के दिन हर बंदे का जो ईमान है ना, ईमान इज इक्वल टू गोल्ड। आपके ईमान में जितने परसेंट खोट टलेगा ना, उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और ईमान में खोट का दूसरा नाम है निफाक। मुनाफिक कौन है? जो जाहरी तौर पर अपने आप को मुसलमान साबित करे लेकिन वो अंदर से बेईमान है। अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसको अगर मैं बोल दूं, जो जाहर में खुद को गोल्ड दिखाए लेकिन वो फेक हो। कुरान क्या कहता है? सूरत अन्निसा आयत 145, इन्नल मुनाफिकीन फिद दर्किल असफली मिनन नार वलन तजीद लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक तो जहन्नुम के सबसे निचले तबके में रखे जाएंगे, नामुमकिन है कि आप उनका कोई भी मददगार पाएं। मुनाफिक, सबसे निचला दर्जा कौन सा होता है? सबसे गर्म तनूर, कभी आपने देखा ओवन, नीचे वाला हिस्सा सबसे गर्म होता है। जहन्नुम ना नीचे आती है। यहाँ ये जो दरके की बातें हो रही है ना, दर्जे से ऊपर जाएंगे ना, स्टेप्स स्टेयर्स, इसको दर्जा कहते हैं, दरवाजा सीढ़ी को कहते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, नीचे जाएंगे बेसमेंट में तो ये दरका होगा। तो मुनाफिक जो होंगे ना, वो जहन्नुम के सबसे नीचे होंगे। इसकी एग्जाम्पल नबी सल्लम के दौर में अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का लीडर था, निफाक की हालत में उसको मौत आई। बास लोगों के इसरार पर अल्लाह के नबी ने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ा दी और बख्शिश की दुआ भी मांगी, मगर इसकी बख्शिश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह के यहाँ कुफर, शिर्क और निफाक पे मरने वालों की बख्शिश की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा नाम आपको दिया था मुर्तद, जो इस्लाम कबूल करे फिर छोड़ दे, उसका अंजाम बुरा। हमें अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी के लोगों में कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को देखा, मुसलमान हुए, फिर इस्लाम छोड़ दिया। इसमें एक नाम अब्दुल्ला बिन जाहश का है। इसी तरह एक और शख्स ईसाई था, फिर मुसलमान हुआ। इसने सूरत बकरा और आले इमरान भी पढ़ ली और अल्लाह के नबी के लिए वही की किताबत करता था, कातिबीने वही में से था, लेकिन बाद में मुर्तद हो गया और ये कहना शुरू हो गया नऊज़ुबिल्लाह के मोहम्मद को तो किसी बात का पता ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ मैं लिख देता हूँ बस वही कह देते हैं। यानी आप सोचिए कि अपने उस्ताद के लिए भी आज ये कह देना, इनको क्या आता जाता है, जो हम लिख देते हैं वही पढ़ देते हैं। ये कैफियत थी। और आपको पता है कि जब उसकी मौत आई तो उसको ईसाइयों ने दफनाया था। सुबह हुआ तो लोगों ने देखा कि उसकी कब्र ने उसको बाहर फेंक दिया। दोबारा उसको दफनाया, लोगों ने कहा ये मोहम्मद के साथियों ने किया होगा ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये उनका दीन जो छोड़कर इधर आ गया, उन्होंने दोबारा कब्र खोदी और उसको बाहर निकाला। और आपको पता है कि तीसरे दिन भी यही हुआ, 3 दफ़ा उसकी कब्र खोदी गई खोदी गई, निकलता गया, और फिर तीसरी दफ़ा इतनी गहरी कब्र खोदी कि एक को वापस निकाल ना सके। लेकिन तीसरे दिन भी देखा तो उसकी कब्र से वो निकला हुआ बाहर पड़ा था। फिर लोगों को पता चला कि ये किसी और का काम नहीं, ये अल्लाह ने उसको सजा दी है, और फिर उसकी लाश को ऐसे ही गलने सड़ने के छोड़ दिया। अगर आप ये वाक़या पढ़ना चाहते हैं ना, ये बुखारी में बड़ी डिटेल से है। अल्लाह ऐसे बंदे को कभी भी अच्छी मौत नहीं देता। तो अपने लिए दुआ करें, नंबर एक अल्लाह में कुफर से बचाए, नंबर दो अल्लाह ताला में निफाक से बचाए, और नंबर तीन अल्लाह हमें इर्ताद से बचाए। अब आप और मैं ये क्यों सुन रहे हैं? आप इतने प्यार से सुन रहे हैं, सबने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, मैं और आप इससे क्या ले जाएं? देखिए मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन बहुत सारे लोग जो नाम तो इस्लाम का लेते हैं, होते तो वो मुसलमान है अपनी नज़रों में, लेकिन कुरान उनके बारे में क्या कहता है? सूरत यूसुफ की आयत है, वमा युमिनु बिल्लाहि अक्सरुहुम फहुम मुशरिकुन। बहुत सारे लोग जो अल्लाह पर ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन वो होते मुशरिक हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये आयत पढ़ी थी, समझ के मेरे हाथ ठंडे हो गए थे इस बात पे कि मैं क्या समझती हूँ अपने आप को। तो पहली बात तो ये है कि अपने ईमान को चेक करें। आपका मेरा अमल इस पे क्या हो कि हम अपना ईमान ज़रा चेक करवा लें। बीपी भी तो चेक करवाते रहते हैं ना, शुगर भी चेक करवा लेते हैं, पता नहीं कुछ हो ना, ज़रा एक एनुअली चेकअप भी हो जाता है। तो ज़रा सा अपना ईमान चेक करवा लें, किसी वक्त भी जाकर किसी दीनदार, किसी कुरान के, किसी के ऐसे ऐसे जिसको थोड़ा सा डायग्नोज करना आता हो।